नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। कतर, ईरान और कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता की विवादित टिप्पणियों को लेकर रविवार को भारतीय राजदूतों को तलब किया। खाड़ी के महत्वपूर्ण देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कतर और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, राजदूत ने बताया कि वे ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते, ये हाशिए के तत्वों के विचार हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने विदेश कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें भारत में व्यक्तियों द्वारा दूसरे धर्म के पूजनीय लोगों को बदनाम करने वाले कुछ आपत्तिजनक ट्वीट्स के संबंध में चिंता व्यक्त की गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वर्तमान में कतर की यात्रा पर हैं और रविवार को उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी से मुलाकात की। इससे पहले मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने भारत के राजदूत को नोट सौंपा। मंत्रालय ने भारत में सत्तारूढ़ दल द्वारा जारी बयान का स्वागत किया, जिसमें उसने पार्टी के नेता को निलंबित करने की घोषणा की। मंत्रालय ने कहा कि कतर भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद करता है। भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने यहां कहा, अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। अधिकारी ने कहा, हमारी सभ्यतागत विरासत और विविधता में एकता की मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने सरकारी खजाने से किसी तरह का धन चुराने की बात से साफ इनकार किया है। लिम्पोपो में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन के समापन के दौरान रामफोसा ने पहली बार राज्य सुरक्षा एजेंसी के पूर्व महानिदेशक आर्थर फ्रेजर द्वारा लगाए गए आपराधिक आरोपों के बारे में बात की। रामफोसा ने पिछले कुछ दिनों से अखबारों की सुर्खियों में आए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे खिलाफ आपराधिक शिकायत में किए गए दावों के बारे में बहुत लोगों की दिलचस्पी और चिंता है। दरअसल फ्रेजर ने एक हलफनामे में आरोप लगाया था कि रामफोसा ने कृषि संपत्ति से हुई 40 लाख अमेरिकी डॉलर की चोरी छुपाई थी, जहां राष्ट्रपति बेशकीमती दुर्लभ मवेशियों को खरीदते और बेचते हैं। रामफोसा ने रविवार दोपहर सम्मेलन के अंत में कहा, मैं फिर से पुष्टि करना चाहता हूं कि मैं किसी भी आपराधिक आचरण में शामिल नहीं था और एक बार फिर मैं किसी भी तरह की जांच में अपना पूरा सहयोग देने का वादा करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जॉन लिपावस्की से मुलाकात की और व्यापार, रक्षा समेत द्विपक्षीय सहयोग में निरंतर प्रगति पर सार्थक वार्ता की। इस दौरान हिंद प्रशांत और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया गया। जयशंकर मध्य यूरोप के दो देशों स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के साथ संबंधों को और गति देने के लिए अपने दौरे के अंतिम चरण में प्राग पहुंचे। जयशंकर ने ट्वीट किया, चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जॉन लिपावस्की के साथ सार्थक वार्ता हुई। चेक गणराज्य यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालने वाला है। भारत यूरोपीय संघ की भागीदारी को आगे ले जाने पर चर्चा की। चेक गणराज्य 1 जुलाई से यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालेगा। जयशंकर ने एक अन्य ट्वीट में कहा, व्यापार, रक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में निरंतर प्रगति पर सार्थक वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार 2 अरब डॉलर को पार कर गया है। यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव और हिंद प्रशांत पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। जयशंकर ने भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक चौराहे पर बने स्मारक में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके प्रति चेक गणराज्य के लोग बेहद सम्मान की भावना रखते हैं। इससे पहले यूरोपीय संसद के चेक गणराज्य के सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जयशंकर ने बैठक की। दक्षिण पश्चिम नाइजीरिया के कैथोलिक गिरजाघर में लोगों पर रविवार को हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर दिया और विस्फोट भी किया, जिसमें कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है। एक जनप्रतिनिधि ने ये जानकारी दी। ओगन मोलासुई ओलू वोले ने कहा कि हमलावरों ने ओंदो राज्य के सेंट फ्रांसिस कैथोलिक गिरजाघर को निशाना बनाया। यह हमला तब किया गया जब श्रद्धालु ईसाइयों के त्यौहार पेंटे कोस्ट संडे के मौके पर वहां जमा हुए थे। ओलू वोले ने कहा कि मृतकों में कई बच्चे शामिल हैं। वो घटनास्थल और अस्पताल में भी गए जहां घायलों का इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने मौत के बारे में तत्काल कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। नाइजीरियाई संसद के निचले सदन के सदस्य टिमिलीन ने कहा कि कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। हालांकि अन्य लोगों ने बताया कि मृतकों की संख्या इससे ज्यादा है। नाइजीरिया का एक बड़ा हिस्सा इस्लामी चरमपंथ का सामना कर रहा है, जबकि ओंदो को नाइजीरिया का सबसे शांत राज्य माना जाता है। नेपाल के रूपनदेही जिले में रविवार को एक बस के पुल से गिर जाने की घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। दुर्घटना रूपनदेही के भैरहवा परासी मार्ग खंड पर उस समय हुई जब बस रोहिणी नदी पर बने पुल से गिर गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, रोहिणी नदी पर बने पुल से बस के गिरने की घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मरने वालों में एक महिला और 8 पुरुष हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, दुर्घटना में 24 लोग घायल हो गए। घायल यात्रियों का भैरहवा स्थित मेडिकल कॉलेज, भीम अस्पताल और सिद्धार्थ सिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।